vitamins and all my minerals. Everything I need comes from Prana. Prana in the morning, Prana in the day. Prana running through me in every single way. Recognize my cravings, I wait for them to pass. I watch the energy flow through me.
All my vitamins and all my minerals, everything I need comes from Prana. Prana in the morning, Prana in the day, Prana running through me in every single way. Recognize my cravings, I wait for them to pass. I watch the energy flow through me, my barefoot in the grass. Energy is rising, my body feels so clear. I'm working through my blockages, I'm working through my fear. All my vitamins and all my minerals, everything I need, comes from Prana. Prana in the morning, Prana in the day, Prana running through me in each and every way. Pranik Yatra Karte Karte इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच रहे हैं। प्राण जगत की यात्रा थी, प्राण ऊर्जा से परिचय था, शक्तियों से परिचय, स्वयं से परिचय, स्वयं के स्वभाव से परिचय, अंतर मन में छिपे हुए विकारों से परिचय। और इस यात्रा में बहुत सी बातें हमने जानी स्वयं के विषय में। प्राण ऊर्जा क्या है, प्राण ऊर्जा कैसे बहती है, डिस्कवर प्राणा, खोज प्राण ऊर्जा की, यूनिफाई प्राणा, ट्रांसफॉर्म प्राणा, प्यूरिफाई प्राणा, डायरेक्ट प्राणा, ट्रांसफॉर्म प्राणा, ट्रांसमिट प्राणा, ये प्राण ऊर्जा का संचार कैसे किया जाए, इस प्राण ऊर्जा को अंदर कैसे स्थापित किया जाए, इंस्टॉलेशन ऑफ प्राणा, ये प्राण ऊर्जा कैसे दीर्घकालीन हमारे शरीर में स्थिर रहे, और फिर मन की ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, कई सारे साधनों की चर्चा हुई। ये सारे टूल्स 106 दिनों में कई सारे टूल्स की चर्चा हुई और इनका उपयोग करते रहना है। ये यात्रा कल पूरी होगी, परंतु हर समाप्ति एक आरंभ है। ये यात्रा मन को पलटने की यात्रा थी, मन को पलटाने की यात्रा थी। मन का स्वभाव है नीचे बहना, विकारों की तरफ जाना, अधोगामी, उसको ऊर्ध्वगामी करना। जो पानी नीचे बह रहा है उसे ऊपर ले जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज्यादा हॉर्स पावर की आवश्यकता है। और बिना मेहनत के ये काम संभव नहीं। और सभी ने बहुत मेहनत भी की है और परिणाम सबके सामने है। एक अभिनव क्रांति थी जिसमें हमने यज्ञ का इतिहास देखा, ये प्राणिक क्रांति जिसमें हमने प्राण जगत की चर्चा की, एक और क्रांति होगी, श्वेत क्रांति। मन में छिपे हुए अंतर, मन में छिपे हुए विकारों को पहचानना, वो बहुत गहरे हैं। उन तक प्राय हम पहुंच नहीं पाते। राजयोग की संपूर्ण साधना के लिए दो चीजें नितांत आवश्यक है। एक की चर्चा हम कर चुके इस 108 दिन की भट्टी में, प्राणिक लिविंग, लिविंग ऑन लाइट इन इंडिया, ब्रदारियनिज्म। एक दूसरा मार्ग और भी है जिसकी थोड़ी सी झलक आज की क्लास में हम देखेंगे, संवेदना। अधिष्ठान, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, बॉडी स्कैनिंग, श्वास को देखना, संवेदना को देखना, ये दो मार्ग है, या फिर ये दो ही मार्ग है। जो राजयोग को सहज करते, इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कई सारे भाई बहनों के बहुत सारे अनुभव है। इतने सारे अनुभव तो यहां नहीं बताए जा सकते, पर कुछ अनुभव हम सुनेंगे। अनुभव कहो या प्रश्न कहो, प्रश्न तो अब भी बहुत है और प्रश्न तो रहेंगे ही, और सभी प्रश्नों के सभी उत्तर नहीं दिए जाते। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं खोजने होते हैं, जीवन खोज है। कुछ अनुभव सुनेंगे और फिर हम।
ओम शांति। ये अनुभव है जो भट्टी में प्रतिभागी रहे हैं। नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू दिस अमेजिंग टीम अंडर द नोबल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन ब्रदर एंजल डॉक्टर सचिन भाई जी। लॉट्स ऑफ टर्म्स ऑफ थैंक्स टू ब्रदर एंड ऑल द टीम मेंबर्स। इट्स वेरी वंडरफुल जर्नी, वेरी प्राउड टू बी इन दिस डिवाइन ग्रुप। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। नेक्स्ट, ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो हमें बहुत ही नया अनुभव दिया, बहुत कुछ हमारी सोच को एकदम ही बदल दिया। मैं खुद कहती थी बच्चों से, ये खाओगे तो ये विटामिन मिलेगा, ये खाओ वो खाओ, अब ये सब खत्म, बहुत मान्यताएं खत्म होगी और मेरे हाथ में सेहत का बहुत बड़ा राज हाथ आ गया। इतना ही नहीं, फरिश्ता बनने की विधि भी समझ गई। मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि कैसे शुक्रिया करूं। नेक्स्ट, ओम शांति टू एंजल ऑफ शिवा टीम। मैं गृहस्थी माता जो सुना रहे हैं। आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। मेरे लिए सॉलिड फूल से लिक्विड फूड का परिवर्तन हुआ, जैसे मर्जी व जन्म में फिर से एक उमंग वाला जन्म होने की संभावना दिख रही है। भोजन बिना रहना पॉसिबल है, समय लगेगा, मगर इस मार्ग से स्वयं के विकारों कमजोरियों पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा, अब ये यकीन हो गया है। हमारे शिवावनी राज्यों के साथ साथ ये प्राणिक यात्रा आपके द्वारा समझाई विश्व की सबसे बड़े ते बड़ा ज्ञान दे दिया। आत्मा का रहस्य, शरीर का रहस्य समझाया। जैसे आत्मा, मन, प्राण और शरीर, इनका संबंध समझने लगी हूँ। आप सबका धन्यवाद।
ओम शांति। मैं कर्नाटक से हूँ। मेरी एज है 38, वेट 69-70 था। अभी मेरा वेट है 66-67, आगे पीछे हो रहा है, बट उसकी कोई चिंता नहीं। हाइट है 5.7। मैंने इसके पहले भी वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग किए हुए हैं, इसलिए अभी कोई फिजिकल डिटॉक्स सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन मेंटल डिटॉक्स थोड़ा बहुत हो रहे हैं। साथ में मुझ में वैराग्य जाग उठा है भाई जी। 4 दिनों के पहले का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, चाहे तो आप 1.5 स्पीड में इसको थोड़ा बढ़ाओ। 22 फरवरी के शाम मैं जब ऑफिस में थी, अचानक मेरे फोन पे बैक टू बैक अमाउंट डेबिट हुआ मैसेजेस आए। देखा कि 1 लाख तक मेरे अकाउंट से पैसे हो गए गायब। मैंने तुरंत बैंक को कॉल करके मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया और ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाया। जो एक्शन मुझे लेना था मैंने ले लिया, बट भाई जी मुझे पैसे के बारे में थोड़ा भी चिंता नहीं हुई। तुरंत मेरे मन में यही संकल्प आए कि मैंने इस आत्मा को पिछले कहीं जन्म में चीटिंग किया होगा। उस आत्मा के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं उठाया। शायद हो सकता है इसी की वजह से अगले 24 घंटों के अंदर मेरे अकाउंट में ₹85,000 तक पैसा आया। 15,000 आना अभी बाकी है, बट मुझे उसकी कोई चिंता नहीं हो रही। शायद मैंने भी उसका रिटर्न किया नहीं होगा। कहने का भाव यही है कि मुझे इस लिक्विड जर्नी में वैराग्य भाव उठा है, ऐसा लग रहा है। थैंक यू भाई जी।
ओम शांति भाई जी। नागपुर से भारती मोड़े बोल रहे हो। मैं ये भट्टी शुरू से कर रही हूँ। जैसे ये भट्टी का नाम असंभव से संभव है, वैसे ही मेरे जीवन में असंभव लगने वाली बातें संभव हो गई है। 2 साल की थी तब पोलियो हो गया। उस कारण मैं चल तो पाती थी मगर थोड़ा थोड़ा। एजुकेशन के बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया। फिर तो क्या, कंप्यूटर पर पूरा वक्त बैठे बैठे काम करती थी। उससे मेरा वजन काफी बढ़ गया है और वजन बढ़ने के कारण मेरा चलना फिरना कम हुआ। फिर सब दर्द, जैसे पीठ, कमर, पैर, इस कारण मैं बहुत दर्द चालू हो गया। इस कारण मैं कुछ कर नहीं पाती थी। मन में बहुत कुछ करने की आशा थी पर उदास हो जाती थी। लेकिन जब से सचिन भाई जी की भट्टी शुरू की, तब से बाबा का हाथ पकड़कर एक एक दिन सफलता से चलने लगी। जब लिक्विड डाइट चालू हुआ तो जैसे मुझे पंख लग गए। दिन ब दिन हल्का महसूस होता रहा और आज तो मैं जैसे उड़ने लगी हूँ। मेरे पैर में स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है और मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। अभी मैं जून में बाबा के घर आबू में आ रही हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ। कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, जो सचिन भाई जी ने मुझे एक आसमान में उड़ने वाली एक मुक्त परी बनाया। शुक्रिया शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। क्या कहूँ मैं, वाह बाबा वाह, कमाल कर दिया। इतना खूबसूरत ये अनुभव है कि जैसे बाबा अव्यक्त वाणियों में कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिनके संकल्पों में भी कोई व्यर्थ का स्पर्श ना हो, तो बस वही स्थिति है। सारे व्यर्थ जो संकल्प कहाँ गायब हो गए, अब शुद्ध संकल्प ही आते हैं, खुशी के ही आते हैं। और जैसे कि कल्पांतरु हो गया है और जैसे हवा में पतंग उड़ती है, वैसे मैं भी उड़ती रहती हूँ और मधुबन में कभी परमधाम में पहुँच जाती हूँ। हम बांधेली माता हैं, कई चीज़ों में ऐसा लगता था कि हम बहुत बंधन में हैं, खास करके भोजन पे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आजादी मिली कि फरिश्ता, अर्थात कोई रिश्ता ही नहीं ना भोजन से ना किसी भी प्रकार के विकार से। विकार तो पता नहीं कहाँ थे क्या हमारे अंदर, ऐसा लग रहा है। और बस अब ये लग रहा है कि बाबा जैसे अक्सर अव्यक्तवाड़ियों में कहते थे ना, हमारी महिमा करते थे, तो कभी लगता था क्या बाबा हम इस लायक है, लेकिन लग रहा है कि नहीं बाबा, सच में आप बिल्कुल 100% सही है, हम ही हैं, हम ही थे, हम फिर से बन रहे हैं। तो इतना सुखद अनुभव है यह कि अब ऐसा लगता है कि ब्रदेरियंस की जो लाइन है उसमें अब हमारा भी नंबर आने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बाबा का। उड़ रहे हैं भाई जी, उड़ रहे हैं, बस उड़ रहे हैं।
ओम शांति, ओम शांति डॉक्टर सचिन भाई। अच्छा लग रहे हैं, और 2 दिन बाकी है खाली, ये होने के बाद और 9 डेज फिर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मीन्स बिना राइस, बिना चावल का खाना, सलाद फ्रूट से ऐसा चला सकते। आप थोड़ा गाइड मी प्लीज। आप सभी ग्रुप को धन्यवाद और बाबा को भी धन्यवाद। ज्यादा हल्का स्थिति हो रहे हैं। वाह कैसे हो रहे हैं, अब इतने दिनों से आप नहीं खा के कैसे रह रहे हैं, सब ऐसे ही पूछ रहे हैं। फिर भी मुझको तो अच्छा लग रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और 9 डेज तो कंटिन्यू करना चाहती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू भैया, ओम शांति, बाय जाओ।
आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर क्रिएटिंग दिस मिशन। लाइफ हैज बिकम इजियर फ्री फ्रॉम द वर्ल्डन ऑफ सॉलिड फूड। अर्लियर टाइम वाज क्रस्ट वाइट फूड प्रिपरेशन, नाउ आई फील आई स्नेस्ड द प्रॉपर्टी ऑफ माई टाइम ऑफ टाइम फ्रॉम सॉलिड फूड। नेक्स्ट, ओम शांति भाई जी, मैंने ये लिक्विड भट्टी से समय का महत्व जान लिया और भी बहुत बहुत सीख लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति भाई जी, हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं, सेंटर में समर्पित बहने हैं। पिछले साल से आपकी भट्टी के क्लासेस हम अटेंड करते रहते हैं। इतना सारा ज्ञान देने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया, आपको दिल से बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। 21 डेज का जो अनुभव है कि हमने आज दिन तक कई टोलियां, ब्रह्मा भोजन, केक्स बनाया, लेकिन हाँ संकल्प मात्र भी कहीं झुके नहीं हैं। हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा, कोई तरह के हेल्थ इश्यूज यानी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आई है। शुरू में हमारा जो वेट था 52, आज दिन तक भी वही है। और हमें इतना लाइट अनुभव हो रहा है, ऐसी स्थिति हम सदा बना कर रखेंगे। हमारा रोजाना डाइट है, सवेरे जूस, दोपहर को ड्राई फ्रूट्स जूस और शाम को जावा लेते हैं, लेकिन हमें विटामिन 12 की कमी है। और साथ वाली बहने कहती है अगर ऐसा ही तुम डाइट लेती रहेगी। तो आगे चलकर हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हमें ऐसा संकल्प नहीं है, लेकिन और कुछ लेना है तो भाई जी आप गाइडेंस करें। ओम शांति,
ओम शांति भाई जी। आपने कहा था आगे 21 दिन के बाद आप जो करना चाहो करो, लेकिन कुछ दिन लिक्विड पर रहो। तो वही सोचा था कि 2-3 दिन तो लिक्विड पे रहेंगे, फिर थोड़ा सा पतला सा ग्रेन लेकर देखेंगे क्या होता है। इससे पहले भी मैंने जो कच्ची सब्जियां खाकर, एक टाइम खाना खाकर ये किया था, आपके सारे जो भट्टियां है वो भी की थी, लेकिन इस बार जब सबके साथ ये लिक्विड का प्रयोग हुआ ना, तो बहुत अच्छा अनुभव ये आया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मन के अंदर दबा हुआ इतना कुछ बाहर आ जाएगा, वो भी आता गया। फिर सबसे बड़ी बात, 2015 के एंड में मुझे 3 स्लिप डिस्क, 3 मनकों में गैप था और ऊपर के 5 टेढ़े हो गए थे। मुझे नीचे बैठना बिल्कुल मना था, लेकिन अभी कल ही मैं 2 घंटे नीचे बैठकर काम कर रही थी और ना मुझे कुछ दर्द हुआ ना कुछ हुआ। वैसे तो पट्टा जो बेल्ट था वो तो मैंने पहले से ही छोड़ दिया था, लेकिन ये अनुभव नया था क्योंकि मैं नीचे बैठ ही नहीं सकती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब लिक्विड से इसमें जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये लिक्विड लाइफ ही अच्छा है। और सबसे ज्यादा मिस करेंगे आपका रोज सुबह का लेक्चर। होप सो आगे की भर्ती आप जल्दी शुरू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, धन्यवाद जो ऐसे ग्रुप से जोड़ दिया बाबा ने। शुक्रिया भाई जी।
भट्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट एक ये अनुभव माता जी का। मेरा बेटा और मैं ज्ञान में हैं। मैं ही उसे ज्ञान में लाई थी ताकि उसको स्टडी में हेल्प मिले। पढ़ाई में तो वह बहुत अच्छा हो गया, पर उसका ज्यादा झुकाव वैराग्य की तरफ हो गया। सभी क्लासेस सुनता है, भट्टी जी कर रहा है। मैं चाहती हूँ वे ज्ञान में चले और पवित्र रहे, पर ऐसा कठोर त्याग मेरे से नहीं देखा जाता। कभी कभी केवल फल खाता था। लंबा लंबा समय महीनों तक मौन व्रत रखता है, बाहर के सन्यासियों को पढ़ता है। आलू पराठे कड़ी चावल जो उसके फेवरेट हुआ करते थे सब छोड़ दिया। 21 दिन के लिए तो हम मान गए थे, अब कहता है हमेशा के लिए ऐसे ही करूँगा। हमसे छुपकर एक दिन ऋषिकेश भी चला गया था। बहुत वैराग्य की बातें करता है, कविताएं लिखता है, वैसे बहुत प्यारा है, सबकी सेवा करता है। पर मैं चाहती हूँ कम से कम जब तक हम हैं तब तक तो अच्छा खा पी ले, फिर बन जाए स्वामी विवेकानंद। अब बताइए मैं क्या करूँ। नेक्स्ट अनुभव है। थैंक यू सो मच भाई जी, एंजल ऑफ डॉक्टर भाई जी, एंजल ऑफ शिवा टीम, थैंक यू सो मच ऑल सोल्स इन संगठन भट्टी टू, थैंक यू फॉर द पावरफुल प्राणिक यज्ञ 2023, वन वर्ल्ड वन फैमिली, बाबा गिव्स अस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ स्टे बिजी। ओम शांति।
अगले दो दिन अपनी प्लानिंग करनी है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे कहा कि 21 दिनों के बाद सॉलिड पर कैसे आए, इसके लिए भी कुछ बातें पहले बताई थी, फिर बता रहे हैं कि 1 मार्च से यहाँ एक नई भट्टी चालू होगी, सभी ग्रुप मेंबर्स की असुर संहारिणी भट्टी। तो वो 21 दिन की भट्टी रहेगी और उस भट्टी में 2 दिन हफ्ते में कम से कम 2 दिन सभी लिक्विड डाइट पर रहेंगे, बाकी सारे दिन सॉलिड। तो वो 2 दिन कोई भी ले सकते हैं, या तो मंडे या फ्राइडे, ये 2 दिन ठीक है, या तो लगातार ले सकते हैं, पर कई लोगों को लगातार 2 दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मंडे से फ्राइडे नहीं, मंडे और फ्राइडे 2 दिन। सैटरडे संडे छुट्टी होती है लोगों को, गुरुवार को भोग होता है। और बीच में थोड़ी गैप भी चाहिए, मंडे कर लिया तो ट्यूसडे थोड़ा और गैप। और हो सकता है कईयों का वजन थोड़ा इस भट्टी में भी, जबकि क्राइटेरिया था वेट स्टेबिलाइजेशन, फिर भी हो सकता है किसी का वेट गिर गया, तो अभी भट्टी पूरी होने के बाद वापस सॉलिड फूड पर आना है, ताकि थोड़ी सी वापस स्टेबिलाइजेशन आ जाए। इस प्राणिक यात्रा में 3 महत्वपूर्ण टूल्स है। सबसे पावरफुल और सबसे मेजर टूल है लिक्विड्स, इसके ऊपर और कोई टूल नहीं है। जब तक शरीर सॉलिडिटी को नहीं छोड़ता और लिक्विडिटी को नहीं अपनाता, तब तक वो पुराने संस्कार जागते रहते हैं, चबाना फाड़ना और काटना, ये एनिमल नेचर है, एनिमल इंस्टिंक्ट, चीविंग बाइटिंग एंड रिपिंग, शेर की तरह फाड़ना, गाय की तरह चबाना, कुत्ते की तरह काटना। इस एनिमल नेचर को 21 दिन हमने सुला दिया था, अंदर जो बीस्ट है, जो राक्षस है, उसको सुला दिया था, इसलिए इसमें इतने पावरफुल अनुभव हुए। भोजन जिसने कि हमारे सारे इमोशंस को ढक रखा था, वो इमोशंस मेंट फिजिकल डिटॉक्स हुआ, मेंटल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स होकर बाहर निकला, हलचल हुई और फिर धीरे धीरे कई सारे स्टेबल हो गए। अब वापस इस यात्रा के बाद सॉलिड फूड पर जाना है, तो सबसे पहला टूल है लिक्विड्स। दूसरा टूल, इस यात्रा में 60-70 अलग अलग टूल्स बताए गए, वो सारे टूल्स सेकंड नंबर पर आते हैं। उसमें सन गेजिंग भी है, उसमें बेयर फुट वॉक भी है, उसमें प्राणिक संकल्प है, अफर्मेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ आप सोच सकते हैं, जितनी किताबों में लिखी है और जितनी सब ने की होगी। उसमें मेडिटेशन है, उसमें ब्रह्मचर्य है, उसमें प्यूरिटी है, उसमें ज्ञान है, योग है, सेवा है, कर्म है, खुशी है, सब वो सारे सारे टूल्स जो है वो नंबर टू में। और नंबर थ्री टूल है इस प्राणिक यात्रा में सॉलिड फूड। सॉलिड फूड, क्योंकि जब तक वापस इसमें नहीं आएंगे तब तक दुख क्या है इसकी अनुभूति नहीं होगी। तब तक उसमें और इसमें अंतर क्या है, अब इस अंतर को जानना पड़ेगा। अब जो हल्केपन का अनुभव किया, वापस उस भारीपन में लौटना पड़ेगा। और लौटो, इच्छा नहीं है फिर भी, पर जिन्होंने बहुत सारे अनुभव पहले कर चुके हैं उनको लौटने की जरूरत नहीं है। बहुत पहले ही धक्के खाए हैं सॉलिड फूड के, और जाना है कि हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण ये सॉलिड फूड ही था। सफरिंग का कारण, इग्नोरेंस का कारण, ज्ञान के चिंतन न होने का कारण, योग की स्थिति न बनने का कारण ये सॉलिड फूड था। उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वापस सॉलिड, पर जिनकी ये प्रथम भट्टी थी, जिनका ये पहला अनुभव था डाइट का, उनके लिए सॉलिड फूड पर जाना बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको तो कंपलसरी है जाना। जिन्होंने पहली बार जीवन में ये लिक्विड्स को अपनाया, चीविंग को, बाइटिंग को और रिपिंग को त्याग दिया 21 दिनों के लिए या 9 दिनों के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वापस सॉलिड फूड पर जाना। तो सॉलिड फूड पर कैसे जाएंगे, सबसे पहले जब भूख लगे तब सॉलिड फूड नहीं खाना है, जब भूख ना हो तो 1 तारीख को तब सॉलिड फूड को खाना है दोपहर को, और जब भूख हो तो लिक्विड से चलने दो, और जब भूख नहीं होगी तब सॉलिड फूड को अपनाना, पहला। दूसरा पॉइंट, अकेले में खाना, एकांत में, मौन में, भोग लगाकर बाबा की याद में, उस भोजन की महिमा करते हुए, कॉन्शियस ईटिंग, और धीरे धीरे खाना। अगला, 1 दिन सॉलिड लेने के बाद हो सके तो उसके अगले दिन फिर लिक्विड पर आ जाओ, मतलब 2 तारीख को कम बैक टू लिक्विड्स और फिर सॉलिड पर चलो। और सॉलिड लेने के बाद वापस सारे संस्कार लौट आएंगे, अंदर का राक्षस फिर जागेगा, वो चीविंग के साथ, रेसिपीज के साथ, डिशेस के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, वो सारी यादें फिर लौट आएगी। शरीर में जो एक हल्कापन आया था वो खो जाएगा, मन की जो स्थिति जो उड़ रहे थे वापस धरती पर पहुंचोगे। पर ये भी पहुंचना जरूरी है, ये ग्राउंडिंग भी जरूरी है, कुछ दिन इसी सॉलिड फूड को चलाना, और फिर हम सोचेंगे कि हमें छोड़ना है पर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार सॉलिड ले लिया तो पीछा नहीं छोड़ता है। फिर सब कुछ खाने की इच्छा होती है, फिर उपमा भी चाहिए, पोहा भी चाहिए, फिर गुलाब जामुन भी चाहिए, 4 बार टोली भी चाहिए, फिर थेपला भी चाहिए, फिर उत्तप्पा, डोसा, सब कुछ, सब 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 आ जाएगा। और फिर हो सकता है किसी का ये सब 1 मास चले, किसी का 2 मास, किसी का 3 मास चले, और फिर धीरे धीरे फिर वैराग आएगा, और फिर पुराने 21 दिनों की यादें फिर आएगी, और फिर कभी भूल चूक से 1 दिन लिक्विड करके देख लेना, और 1 दिन लिक्विड करते ही फिर से शक्ति भरेगी, और फिर से लगेगा आप 2 दिन करें, और फिर 3 दिन करें, और फिर अचानक ब्रह्मा भोजन आ जाएगा और अचानक कोई पार्टी आ जाएगी और अचानक फिर से सॉलिड फूड लेंगे और सॉलिड फूड लेते ही फिर से वो 3 दिन का वैराग हो जाएगा और फिर से सॉलिड फूड आ जाएगा और फिर वो चलेगा 2-3 मास, हो सकता है 1 साल, और फिर भूल ही जाए कि ये भी कुछ था। इसलिए जो अगली भट्टी चल रही है उसमें हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार सॉलिड फूड चलेगा, ऐसे 6 दिन होंगे वो 21 दिनों में। तो यहां पर याद दिलाते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो सॉलिड फूड इंटीग्रेशन, इस टॉपिक को कहा जाता है सॉलिड फूड इंटीग्रेशन, लिक्विड के बाद में सॉलिड पर वापस आना और धीरे धीरे आना, प्लानिंग के साथ आना। और यदि आपका कोई ब्रदरियन फ्रेंड है, प्राणिक फ्रेंड है, यदि सर्कल है, कई लोग मिलके किए हैं ये चीज, तो हो सकता है ये भी कर सकते हैं, प्लान्ड मील करो, कंबाइंड मील, दोपहर का जो लंच है 1 तारीख का, वो सब कंबाइंड करके प्लानिंग करो, सॉलिड फूड अच्छा बनाओ, भोग लगाओ और फिर मिलकर खाओ और धीरे धीरे खाओ और चबा चबा के खाना। भूख नहीं लगी है तो छोड़ देना, भूख नहीं लगी हो तो खाना, सॉरी, ताकि कम खाओगे। और फिर हमारा भोजन के साथ क्या संबंध है ये समझ में आएगा, क्या क्या रिलेशंस है, क्या कैसे 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 संस्कार जुड़े हुए हैं। तो ये था सॉलिड फूड इंटीग्रेशन। आज का जो टॉपिक है वो कुछ और है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिष्ठान। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा यहां हो चुकी है पर इसको समझना बहुत जानना महत्वपूर्ण है राजयोग के अभ्यास के लिए। तो अब इस टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारी 5 इंद्रिय, नाक है, आंख है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, सभी किताबों में, मुरलियों में, सब जगह पर अध्यात्म में यह सिखाया जाता है कि इनके जो विषय है इनका त्याग करो, इनके जो विषय है वो भटकाते हैं, इनके जो विषय है उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आंख देखना चाहती है, नाक सूंघना चाहता है, कान सुनना चाहता है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, स्वाद रस लेना चाहती है जिह्वा, और फिर हमारी आसक्ति होती है, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, जो अच्छी लगती है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि ये चीज हमें बार बार मिले, कोई गीत सुना तो उसको बार बार सुनने की इच्छा होती है, परंतु किसी के अपशब्द सुने उससे दूर भागते हैं, वो वहां से आ रहा है, हम इधर से। किसी को स्पर्श किया, वो स्पर्श की स्मृति रहती है। ये 5 खिड़कियां है और कोई दूसरी खिड़कियां है ही नहीं, 5 ही खिड़कियां है बस, जिससे हमारा बाह्य जगत से संपर्क होता है। हाँ, अगर ये 5 खिड़कियों को बंद कर दिया जाए तो 1/6 खिड़की खुलती है, मन की, यादों की। तो देखा जाए तो ऐसी 6 खिड़कियां है और 6वीं खिड़की मन का विषय है चिंतन। और ये सारे हैं इंद्रिय, इनके भी अपने अपने विषय हैं। तो ये तो हमें पता है कि ये देखना नहीं, वो देखना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ नहीं लगाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना, वो खाना, ये सूंघना, वो सूंघना, ये सुनना, ये नहीं सुनना, ये सब बताते रहते हैं। अध्यात्म में शिक्षाएं बहुत है, परंतु जब आसक्ति हो जाती है कुछ सुनने से, कुछ स्पर्श करने से, कुछ देखने की, और यदि कोई इन 5 खिड़कियों को बंद भी कर दे तो 6वीं खिड़की खुलती है, फिर एकांत में यादें आती है और वो उतना ही उत्तेजित करती है जितनी ये खुली 5 खिड़कियां। क्या करें, फिर हम क्या करते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते। किसी व्यक्ति से मोह हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर इससे मोह कम थोड़ी होता है। कोई चीज हमें खाने में पसंद आ गई और फिर हमें लगता है ये नहीं खानी चाहिए, उसको छुपा के रखते हैं, परंतु मुझे पता है छुपा के मैंने कहां रखी है, फिर लेते। मार्ग क्या है? एक मिसिंग लिंक है, एक मिसिंग कड़ी है जिस पर काम करना रह गया है। हमें यह बताया गया ये हाथ नहीं लगाओ, ये नहीं करो, ये नहीं देखो, ये नहीं सुनो, ये नहीं बोलो, ये नहीं खाओ, ये सब तो है, परंतु कैसे, ये कहीं पर बताया नहीं गया है, हाउ। और वो है एक मिसिंग लिंक। जैसे ही आवाज कान में टकराता है, जैसे ही कोई चित्र आंखों में टकराता है, जैसे ही कोई सुगंध नाकों में टकराती है, जैसे ही कोई स्पर्शव्य वस्तु स्पर्श जिह्वा अपना त्वचा को स्पर्श करती है, जैसे ही कोई भोजन या रस जिह्वा को से टकराता है, एक चीज उत्पन्न होती है और वो है संवेदना, सेंसेशन। व्यक्ति दारू पीता है, एडिक्शन उस दारू का है ही नहीं। व्यक्ति स्मोकिंग करता है, एडिक्शन उस स्मोक का, उस सिगरेट का है ही नहीं। व्यक्ति काम विकार में उतरता है, एडिक्शन उस स्त्री का है ही नहीं, ना ही उस पुरुष का है। एडिक्शन किसका है? व्यसन किसका है? व्यसन कहां उत्पन्न हो रहा है? व्यसन उत्पन्न हो रहा है संवेदना से। जैसे ही कोई चित्र आंख से टकराता है, चित्र बहुत सुंदर है, एक स्त्री का चित्र, एक पुरुष का चित्र आंखों से टकराया, एक संवेदना जागती है, एक सेंसेशन उत्पन्न होता है, और वो सेंसेशन इतना सुखद होता है, इतना सुखद, तन बदन में सुखद अनुभूति होती है, प्लेजरेबल सेंसेशन, और वो सेंसेशन रजिस्टर हो जाता है माइंड में, और फिर एकांत में वो याद आता है। दारू पी व्यक्ति ने एक सुखद संवेदना जागी, एडिक्शन दारू के प्रति नहीं है, उस संवेदना के प्रति है। काम विकार में व्यक्ति उतरा, काम विकार के प्रति नहीं है, उस सुखद संवेदना के प्रति है, वो सेंसेशन के प्रति एडिक्शन हुआ है। कोई चीज खाई, रसगुल्ला खाया, एडिक्शन रसगुल्ले का नहीं है, उस रसगुल्ले के वजह से जो सुखद संवेदना जागी है उसके प्रति है, क्योंकि वही व्यक्ति जब बीमार पड़ता है उसको पी लिया होता है, रसगुल्ला सामने है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? बीमार पड़ता है, हीमोग्लोबिन 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, खून बह जाता है शरीर से, टीबी की बीमारी हो जाती है, इतना कमजोर, डायलिसिस चलता है, खाने की सारी वस्तुएं, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? जबकि उसकी फेवरेट है। ये भाई का उदाहरण माँ कह रही है ना, पहले उसकी सारी चीजें फेवरेट थी, आलू परोठा, अभी वो कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि उसको कहीं और रस मिल रहा है। अभी ये संवेदना छोटी हो गई, कोई नई संवेदना जागी है। तो इन सभी विषयों के पीछे और विषय वस्तुओं के बीच एक मिसिंग लिंक है, और वो लिंक है सेंसेशन, संवेदना। कोई गीत सुना, इतना अच्छा लगा, बार बार सुना, फिर ढूंढा कहां है वो गीत, नहीं मिला, तो जिसने बजाया उसके पीछे लगते हैं कि वो गीत हमको चाहिए, कहां से लाया, कहां से लाते हो ये सारे गीत, हमको भी चाहिए। और वो गीत को कितनी बार सुनते हैं, दिन रात सुनते रहते हैं, इतना सुनते कि कुछ दिनों के बाद वो गीत से ही वैराग आ जाता है। सेंसेशन। कोई चीज पसंद है, इतना खाते वही चाहिए। कोई टच किया किसी व्यक्ति को, उसका स्पर्श, वही चाहिए, उसके शरीर का स्पर्श, शरीर के अंग प्रत्यंगों का स्पर्श उसे पागल करता है। तो बीच में मिसिंग लिंक कौन सी है? सेंसेशन, संवेदना। अब इस संवेदना को समझना है, ये सेंसेशन क्या है, ये सेंसेशन क्यों उत्पन्न होते हैं, इन सेंसेशंस का स्वभाव क्या है, ये सेंसेशन निरंतर शरीर पर उत्पन्न हो रहे हैं, और सेंसेशंस के कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है प्रकृति, मौसम।
ठंडा मौसम हो तो ठंडी लगती है, गर्मी हो तो गर्मी होती है, पसीना आता है, पसीना क्या है, संवेदना। तो पहला कारण मौसम, दूसरा कारण भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन खा लिया, संवेदना जागती है, मीठा खाया, संवेदना जागती है। अगला कारण वात पित्त और कफ, अगला कारण बीमारियां, शरीर की बीमारियां शरीर पर संवेदना उत्पन्न करती है, अपेंडिक्स, किडनी स्टोन, दर्द होता है, दर्द क्या है, संवेदना, एक पेन, एक सेंसेशन है, खुजली हो रही है, पीलिया हो गया किसको, खुजलियां होती रहती है, खुजली क्या है, संवेदना, पसीना क्या है, संवेदना, काटा छुप किया, संवेदना, सांप ने काट लिया, संवेदना, दर्द हो रहा है, ठोकर लग गई, संवेदना। तो संवेदनाओं के कई सारे कारण हैं, और सबसे मुख्य एक कारण है कर्म संस्कार, जो हमारे डीप किए हुए कर्म है जन्म जन्मों में, उन कर्म संस्कार के वजह से शरीर पर संवेदनाएं उत्पन्न होती है। ये चीजें बहुत गहरी है, ये धीरे धीरे समझ में आएगी, ये लास्ट पॉइंट। अब हमने ये जाना विषय, विषय वस्तु, विषय वस्तु विषयों में टकरा है और संवेदना जागी। ये जो संवेदना जागी दो प्रकार की है या तीन प्रकार की, सुखद दुखद, सुखद अदुखद। पहली संवेदना सुखद, प्रिय, प्रिय संवेदना जागते ही हमें वो चाहिए, उसके प्रति प्रतिक्रिया हम क्या करते हैं, राग, वो चाहिए और चाहिए और चाहिए, राग उत्पन्न होता है, अटैचमेंट उत्पन्न होती है उसके चीज। जिलेबी क्या खा ली एक बार, इतनी पसंद आ गई कि हर बार जिलेबी ही चाहिए, क्योंकि राग उत्पन्न हो गया। कोई गीत क्या सुन लिया, वही गीत सुनना है। किसी का रूप क्या देख लिया, वही रूप चाहिए, वही स्त्री चाहिए, वही पुरुष चाहिए। वो नहीं है तो सारा संसार सूना सूना लगता है। संसार में प्रेमी होते हैं ना, एक दूसरे को कैसे बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते रहते हैं, वो क्या आत्मा का प्यार है क्या, तुम्हारे बगैर मुझे नींद ही नहीं आती है, कहां थे तुम, I'm missing you, missing whom, soul और body, body, क्योंकि उसके शरीर को देखते ही उसके शरीर की दुर्गंध भी सुगंध अनुभव होती है प्रेम में व्यक्तियों को। संवेदना, सेंसेशन, तो इस सेंसेशन के कई सारे कारण हैं। मुख्य कारण बीमारी, मुख्य कारण मौसम, मुख्य कारण भोजन, मुख्य कारण कर्म संस्कार, इनके वजह से संवेदनाएं जागती है। अब ये संवेदनाओं के प्रकार, तो पहला प्रकार बताया सुखद, प्लेजरेबल सेंसेशंस, दूसरा प्रकार दुखद, सॉरोफुल सेंसेशन, अनप्लेजरेबल सेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसे अवॉइड करना चाहते हैं। कोई अगर यहां पे कोई ऐसे चुभाए तो उसको क्या बोलते हैं, और चुभाओ, नहीं, हम उसको अवॉइड करना चाहते, सुई को अवॉइड करना चाहते। कोई कर्कश ध्वनि सुन ली, क्लास चालू है, बीच में मोबाइल बजता है, आनंद की अनुभूति होती है क्या, नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत 7:30 के पहले 4 बार बजता है, शिव की याद रहेगी तब, छोटा शिव की याद रहेगी तब, फिर दूसरा छोटा शिव की याद रहेगी तब, फिर और एक छोटा सा शिव की याद रहेगी तब, और फिर एकदम बड़ा वाला शिव की याद रहेगी तब। कभी इधर से बजता है, कभी उधर से बजता है, कभी इस माता की मोबाइल से बजता है, कभी उस माता की मोबाइल से बजता है, कभी इस भाई के मोबाइल से बजता है, और जिसके मोबाइल से बज रहा है उसको पता ही नहीं रहता कि मेरे इससे बज रहा है, इतना मगन होता है। जब उसको पता चलता है, दूसरे बताते हैं तुम्हारा बज रहा है, फिर माता जी अपनी पर्स में 3-4 खानों में मोबाइल कहां है पहले उसको ढूंढती है, फर्स्ट चेन, सेकंड चेन, थर्ड चेन, तब तक शिव की याद रहेगी तब, चालू ही चालू है, और फिर मोबाइल पता चलता है, पर उसके बाद उसको पता नहीं अब उसको बंद कैसे करना है क्योंकि उसको काम दो ही आते हैं, हेलो, बेटे ने फोन लेके दिया है पर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई, और उसको बंद करने के चक्कर में जब वो बंद ही नहीं होता है तो वो सोचती है अभी यहां से बाहर जाना ही ठीक है, क्योंकि मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। और जाते जाते भी शिव की याद रहेगी तब चालू ही। कर्कश ध्वनि के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते बाकी लोगों के मन में? द्वेष। सोचते इसको मिलने दो, बाद में समझाता हूं सिखाता हूं। एक बार तो संकल्प हर एक के मन में आता ही होगा, मिलने दो इसको एक बार, द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। कोई हमारी ग्लानी करता है, द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, नहीं सुनना चाहते हम, क्रिटिसिज्म, अपोजिशन, विरोध, द्वेष। स्पर्श, कोई जाता है क्या सिस्टर से कहता है कि हॉस्पिटल यहां इंजेक्शन लगाओ, वो कहते गोलियां दे दो बस। हर पेशेंट क्या कहता है, गोलियां नहीं है क्या? जब भी इंजेक्शन देते तो क्या कहते, गोलियां होगी तो बताओ, इंजेक्शन से तो बहुत डर लगता है, पेन है उसमें। पेनफुल सेंसेशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, प्लेजरेबल सेंसेशंस को भोगना चाहते हैं, और जो अनप्लेजरेबल सेंसेशन है उनको अवॉइड करना चाहते हैं। एक तीसरा सेंसेशन भी है, सुखद असुखद अदुखद, असुखद अदुखद, परंतु ये बहुत ऊंची अवस्थाओं में प्राप्त होता है, परंतु वो भी बाधा है, वो हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा सेंसेशन, एक सेंसेशन के प्रकार और इन सेंसेशंस का स्वभाव क्या है, अभी इस पर आते हैं। इन सेंसेशंस का स्वभाव कैसा है? यहां बहुत दर्द हो रहा है, परंतु अगर हम उस दर्द को देखते रहेंगे तो देखेंगे कि यह दर्द थोड़ी देर के बाद लुप्त हो गया, अनित्य है, थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है। यहां खुजली हो रही है, देखते रहो खुजली चली जाएगी। हाँ, अनलेस एंड अंटिल वो कोई, अगर दर्द फ्रैक्चर वाला है वो अलग बात है, परंतु वैसे ही जो शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, अचानक यहां खुजली करने की इच्छा होती है, वहां कुछ भी नहीं है फिर भी खुजली करने की इच्छा होती है, अचानक करते भी है। शॉल को ही ठीक करते, क्यों ठीक कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है, कुछ तो हो रहा है वहां पर, संवेदना जाग रही है, क्योंकि हमारा एक स्वभाव बन गया है भोक्तापन का स्वभाव। अभी हमको इस भोक्तापन को साक्षी भाव में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा अभ्यास है तटस्थ भाव, अधिष्ठान की बैठक, ये है साधना। और आज से हम सभी व्रत लेंगे एक साल का, 24 घंटे में एटलीस्ट एक बार एक घंटा अधिष्ठान में बैठना है। ये अधिष्ठान की बैठक कैसी है और इसमें क्या करना है? अधिष्ठान की बैठक में अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, परंतु जो आसन ले लिया बस वही आसन में बैठना है। अधिष्ठान मिनिमम होता है एक घंटे का, पैर जैसे है वैसे ही रहेंगे, हाथ जैसे है वैसे, चाहे ऐसे रखो कैसे भी रखो, या बंद करके रखो आंखें बंद। यह अधिष्ठान की बैठक है, जैसे बुद्ध को देखा होगा, महावीर को देखा होगा, अधिष्ठान की बैठक में बैठे हैं, जैसे योगी बैठा है, चट्टान की तरह अडिग है। और क्या करना है? शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उनका निरीक्षण करना है, बॉडी स्कैनिंग करनी है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चालू कहां से करेंगे? सिर के चोटी से, यह हमारा शरीर है, तो यहां से चालू करेंगे, यह सिर है, यहां से सिर के सिरे से चालू करेंगे। ये सिरे पर कौन सी संवेदना है? आंखें बंद कर केवल देखेंगे, मन को घुमाएंगे कि यहां क्या संवेदना है। फिर आएंगे मस्तक पर, इस मस्तक पर किस तरह की संवेदना है, कहीं सुखद है कहीं दुखद है, कहीं बहुत अच्छा लग रहा है कहीं तनाव है कहीं खिंचाव है। नाक पर आएंगे, मुख पर आएंगे, कान पर आएंगे, होठों पर आएंगे, गालों पर आएंगे, पूरे चेहरे पर मन को घुमाएंगे और शरीर में इस चेहरे पर हो रही संवेदनाओं का केवल साक्षी भाव से निरीक्षण करेंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या हो गया है? प्रतिक्रिया करने का। और इसी प्रतिक्रिया की वजह से राग और द्वेष उत्पन्न हुआ है, और राग और द्वेष सभी विकारों की जड़ है। अगर हम देखें सारे विकार केवल दो ही है, पांच विकार नहीं है, केवल दो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। किसी के प्रति हम अट्रैक्ट होते, किसी के प्रति हम अविकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, दूर जाना चाहते हैं। इसी से हमारे जीवन में सारे दुख है। तो हम तटस्थ भाव को अपनाएंगे, तटस्थ मुद्रा में बैठकर संवेदनाओं को साक्षी होकर देखेंगे। यहाँ कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, कहीं दुख है, कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कहीं खुजली है, कहीं धूजन, कहीं सूजन, कहीं दुखाव, कहीं जलन हो रही है, कहीं आग हो रही है, कहीं मच्छर काट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। प्रतिपल शरीर के अंग अंग में एक एक सुई की नोक जितनी भी जो हिस्सा है शरीर का, वहां कुछ ना कुछ संवेदना उत्पन्न हो रही है। तो हम चालू करेंगे सिर के सिरे से, फिर आएंगे गर्दन पर, नेक पर कौन से संवेदना है, फिर आएंगे राइट हैंड, राइट हैंड शोल्डर से चालू करेंगे, आर्म्स, नीचे उंगलियां, पूरे हाथ में देखेंगे क्या है इस हाथ में, कुछ तो हो रहा है। हाथ हिलाने की इच्छा होती है, हिलाना नहीं है, पर तटस्थ रखना है। प्रतिपल तटस्थ, प्रतिपल सजग, इस हाथ को तटस्थ साक्षी भाव से देखते रहना है। और जैसे कहा, संवेदनाओं का स्वभाव क्या है, अनित्य है। उत्पात होता है, लय होता है, उत्पात होता है, लय होता है, राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग। अभी अभी दर्द हुआ, खत्म हो गया, अभी यहां हो गया, अभी यहां खुजली हो रही, थोड़ी देर में यहां खुजली हो रही, यहां कुछ हो रहा है, 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 प्रतिपल कुछ कुछ हो रहा है। और हर संवेदना का स्वभाव है, हर संवेदना अनित्य है, क्षणभंगुर है, टेम्पररी, इट इज इवानेसेंट, शॉर्ट लास्टिंग, ट्रांजिटरी, इट इज ट्रांजिटरी, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, पासिंग एंड राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को, उस संवेदना को साक्षी होकर देखना तटस्थ भाव से, तो देखते जाना, फिर हाथ पे आना, हाथ पूरा हो गया, फिर आना लेफ्ट हैंड, फिर कहाँ आएंगे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पूरा हो गया, फिर आएंगे छाती, राइट छाती, लेफ्ट छाती, फिर आएंगे पेट की तरफ, ये पूरा हो गया, फिर जाएंगे पीठ और कमर, पीठ की तरफ, कमर की तरफ, मन को घुमाएंगे, ये पूरा हो गया, फिर जाएंगे पैर की तरफ, राइट लेग, फिर आएंगे लेफ्ट लेग। जब एक राउंड पूरा हो जाएगा, कम से कम 10 मिनट लगना चाहिए एक राउंड को, मिनिमम 10, और एक बार जो हिस्सा छोड़ दिया उसको वापस नहीं लौटना है। जैसे आपने राइट हैंड ले लिया और फिर लेफ्ट हैंड में चले गए, और लेफ्ट हैंड में जाने के बाद राइट हैंड में कुछ हो गया तो पीछे नहीं जाना है, वो छूट गया तो छूट गया, अब इधर ही रहना, और एक राउंड पूरा करना, और राउंड पूरा होने के बाद फिर वो हिस्से शरीर के जो छूट गए वहां पर मन को घुमाना, और पूरा राउंड हो जाएगा एक, उसके बाद में फिर से दोबारा राउंड चालू करना, फिर तीसरी बार राउंड चालू करना, और कभी कभी फिर नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये पूरी एक घंटे की अधिष्ठान की बैठक है, जिसमें तटस्थ भाव से बैठे रहना है, और एक घंटा होते होते ऐसा अनुभव होगा कि ये शरीर अब शरीर रहा ही नहीं, शरीर का सारा ठोसपन टुकड़े टुकड़े हो गया है, शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे ही तरंगे, विभाजन हो गया है, कौन खाना खाएगा, कहाँ है पेट, कहाँ है मुख, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, केवल भंग 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 की अवस्था, अरिहंत में डुबकी। ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं, हमने ये बोला ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिना आत्मा हूं बोले ही अशरीरी हो गए। अनित्य बोध को जगाना है, और सारा काम इस शरीर के अंदर ही करना है, बाहर हम कुछ भी नहीं कर रहे, और रोज एक घंटा ये अभ्यास करना है। तो सभी तटस्थ होके अभी अभी बैठेंगे, जो नीचे बैठ सकते नीचे आ जाओ, 5 ही मिनट के लिए करेंगे, पर बहुत पावरफुल अधिष्ठान की यह बैठक होगी, एक्सट्रीमली पावरफुल, नो म्यूजिक, इस अधिष्ठान में कोई म्यूजिक नहीं होता है, म्यूजिक तो बाधा है, म्यूजिक बंधन है, म्यूजिक बाहर का है। सामने सामने आ जाएंगे, जितना हो सके पीठ को कोई सपोर्ट ना हो, और तटस्थ बैठना है जैसे योगी बैठता है। महात्मा बुद्ध आए, देखे उनका शिष्य अनाथ पिंडक बैठा हुआ है, अधिष्ठान की बैठक है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। बुद्ध कहते हैं साधो साधो साधो, सभी स्थिर हो सके तो हाथों को लॉक कर दो, या जहां रखे बस वहीं रख देना, उंगली भी ना हिले, आंखें बंद। संपूर्ण स्थिरता। शरीर फिर भी रिलैक्स परंतु स्थिर। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल साक्षी होकर देखना है श्वास को। होठों के ऊपर जो स्थान है, नासिका के नीचे, मन को वहां स्थिर करना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल देखना है बस। अब मन को ले चलो सिर के सिरे पर, मन को चेहरे पर घुमाएंगे। किस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, स्थूल संवेदना है या सूक्ष्म है, प्रिय है अप्रिय है, सुखद है दुखद है, प्रतिपल कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं तनाव है, कहीं खिंचाव है, कहीं सूजन, कहीं दूजन, टिंगलिंग नमनेस, केवल देखना है। गर्दन, दाया कंधा, राइट आर्म, एल्बो, राइट फोरआर्म, कलाई, उंगलियां, पूरे हाथ में अपने मन को घुमाना है। आंखें बंद। सूक्ष्म संवेदनाएं, सेंसेशंस, तटस्थ भाव से देखना है, अनित्य बोध के साथ देखना है। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट फोरआर्म, संपूर्ण बाया हाथ ऊपर से नीचे तक, कपड़ों का शरीर को स्पर्श, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संवेदना जग रही है। साक्षी भाव, भोक्ता भाव नहीं। जो कुछ शरीर पर हो रहा है तटस्थ भाव से देखते रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सुखद संवेदनाओं के प्रति राग नहीं, दुखद के प्रति द्वेष नहीं। ऑल सेंसेशंस आर सो फ्लिटिंग, सो टेम्पररी, राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। छाती की तरफ आएंगे, दाई छाती, बाई छाती,
पेट का हिस्सा। पीठ का हिस्सा, मन को पीठ पर घुमाएंगे। कमर का हिस्सा, कहीं ठनक रहा है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं गर्मी लग रही है, कहीं ठंडी, हो सकता है कहीं पसीना आ रहा है, तटस्थ भाव। अब राइट लेग, दाई जांघ, दाया घुटना, दाई पिंडली, टखना, एड़ी, पैरों के पंजे, कुछ संवेदनाएं भीतर है, कुछ बाहर है। मसल्स में कुछ हो रहा है, ट्विचिंग्स हो रही है, ट्रेमर्स, कंपन हो रहा है कहीं ना कहीं। जो कुछ हो रहा है होने दो, केवल देखना है। बाया पैर ऊपर से नीचे तक मन को घुमाएंगे। शरीर के वो हिस्से जो छूट गए, एक एक हिस्से से मन को घुमाना है। फिर से सिर के सिरे की ओर आएंगे। वापस शरीर का निरीक्षण ऊपर से नीचे तक इसी क्रम से। अनित्य बोध के आधार पर समता को स्थिर करेंगे। समत्व भाव, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रत्येक संवेदना नश्वर है, उसका जन्म हो ही रहा है ताकि वो नष्ट हो जाए। उदय लय, उदय विलय, फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मन को घुमाएंगे। अब इस बार एक साथ मन को पूरे चेहरे से, दोनों कंधे एक साथ, दोनों हाथ, छाती, पेट एक साथ, दोनों पैर, दोनों घुटने एक साथ, फिर से एक धारा प्रवाह। शरीर के कुछ हिस्से मूर्छित है, जहां कोई संवेदना नहीं मिल रही है, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना है। ऊपर से नीचे तक एक सेकंड में अब मन को घुमाएंगे। धारा प्रवाह, एक साथ पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे एक सेकंड में। संपूर्ण शरीर अवस्था तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे। ये शरीर कहाँ गया? ठोस बना चला गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। वाइब्रेशंस केवल वेव्स एंड वेवलेट्स। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य मणि हूं, प्राण ऊर्जा से भरपूर। ओम शांति। सभी आंखें खोलेंगे। ये अधिष्ठान की बैठक थी 5 मिनट की। इसको करना है कितना समय? 1 आवर। टारगेट है 1 आवर हर दिन आज से 1 साल तक। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अचानक अशरीरीपन हो जाएगा। इसका अभ्यास, इस यात्रा में ये भी एक टूल है। अच्छा, ओम शांति।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भवन, विजय भवन, गगन गए विजय भवन। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजय भवन। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी पुल बुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल, माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबारा। लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी।
संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन।